मित्रों, आप सब ने सितारा देवी का नाम सुना होगा, बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज का भी नाम सुना होगा। आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं विशाल कृष्ण के साथ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कथक नर्तक हैं। तो नमस्कार विशाल जी।
नमस्कार
विशाल जी। कथा कहे सो कथक, तो आप बताइए आपकी क्या कथा है?
मेरा जन्म बनारस घराने से हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कथक में तीन घराने बहुत प्रमुख हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। की शुरुआत हुई है आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी से, और उन्होंने ही, जो उसकी प्रवर्तक है, जो फाउंडर है बनारस घराने के, वो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर है आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी। और मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा मेरे दादी बुआ जी यानी कथक क्वीन सितारा देवी जी, उसके बाद मैंने अपने पिता पंडित मोहन कृष्ण जी से ली है।
बहुत ही सुंदर कथा है आपके नर्त कला की। तो आप 11वीं पुष्त हैं बनारस घराने के नर्तकों में से।
हाँ।
तो विशाल, ऐसा है कि बताइए हमें बनारस घराने की क्या विशेषता है, ये दूसरे घरानों से कैसे अलग है?
मेरी दादी जी हमेशा कहती थी कि आप जहाँ रहते हैं आप उसी के रंग में ढल जाते हैं, है ना
जी।
जैसा आपको माहौल और जैसा वातावरण आपको मिलता है आप उसी के अंदाज में ढल जाते हैं। तो जो काशी है, जो बनारस है, वो शिव की नगरी है, वो पूरा ही शहर हमेशा शिवमय रहता है। तो जो बनारस घराने का जो स्टाइल है वो थोड़ा हट है बाकी घरानों से। हम ज्यादातर तांडव शैली का बहुत प्रयोग करते हैं। जो तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया था
जी, जी, जी।
और जो नटवरी अंग है भगवान श्री कृष्ण का, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया के ऊपर मर्दन किया था, तो जो उन्होंने एलिमेंट्स यूज किए होंगे उस वक्त, और भगवान शिव ने जब जो तांडव स्वरूप में जो भाव भंगिमा जो दिखाई होंगी, उन भावों को हम ज्यादातर कथक नृत्य के अंदर प्रयोग करते हैं।
सुंदर।
और जैसे कि लखनऊ घराने का जो स्टाइल है और जो जयपुर का स्टाइल है वो बहुत थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। उस वक्त स्टेज पर डांस नहीं हुआ करता था, मतलब मंच पर प्रस्तुति नहीं होती थी उस वक्त
जी।
उस वक्त सिर्फ राज दरबारों में नृत्य हुआ करता था, तो उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट था। मतलब ज्यादातर अपनी आंखों से बात कहना, अपने भावों का संचालन करना। बाद में जब जो बनारस घराने के जो गुरु लोग रहे हैं, उन्होंने सोचा कि जब ये नृत्य जब मंच पर पहुंचेगा, अगर इसको 5,000 की पब्लिक जब इसको देखेगी
जी।
तो अगर इतना भावों का अगर अंदाज करेंगे और इसकी आंखों से नजाकत करेंगे तो कोई इसे देख नहीं पाएगा।
सही
है ना।
हाँ,
तो उसके बाद उन्होंने इसे और दूसरे तरीके से ढाल दिया और हमारे जो मूवमेंट्स है बहुत खुले खुले कर दिए।
अच्छा,
बहुत ओपन डांस कर दिया। जैसे कि कहते हैं बनारस का जो, जैसे बनारस तो गायन, वादन और नृत्य तीनों का घराना रहा है बनारस में। तो ऐसे कहते कि जैसे वादन में बनारस के जब तबला जब बजाते हैं वहाँ के, तो धा मार के हाथों को खुला छोड़ते हैं तबले पर। धा मारने के बाद तबले पे हाथ रख के उसकी ध्वनि को बंद नहीं करते हैं, धा मार के उसको गूंज छोड़ते हैं उसकी। उसी प्रकार वहाँ का नृत्य भी है, पर बनारस घराने का अंदाज जो है वो फिक्स नहीं रहता है,
एक खुले भाव से, खुले मनोमस्तिष्क से।
जब सितारा देवी जब जी जब डांस करना उन्होंने शुरू किया, तो आप जानते कि उस टाइम पे स्त्री लोग डांस नहीं करती थी, उस टाइम पे लेडीज का डांस करना वर्जित था। उस वक्त जब वो दौर एक ऐसा था कि लोग डांस नहीं देखते थे और इसे बहुत बुरी तरीके से, बुरी नजर से देखते थे, तो उस वक्त का दौर ऐसा था कि सितारा देवी जी ने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया अपने इस आर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और फिर उसके बाद गोपी कृष्ण जी का दौर आया, फिर गोपी कृष्ण जी ने इसे शुरू किया। उसके एक कहते हैं जैसे अगली पीढ़ी आना, तो सितारा देवी जी के बाद जो अगली पीढ़ी आई गोपी जी ने, उसे मंच तक तो पहुंचाया। फिल्मों में बहुत ज्यादा उन्होंने इसे नृत्य में, मतलब इस नृत्य का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया
जी। मैं यही आपसे पूछने वाली थी। एक तो मैं आपकी दादी जी सितारा देवी से भी मिल चुकी थी बहुत पहले बॉम्बे में, और फिल्मों की बात करें तो फिल्मों के पर्दे पर जो कथक दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
देखिए, अगर पहले की बात करें तो पहले तो बहुत सारे क्लासिकल डांस यूज हुआ करते थे, जैसे भरतनाट्यम भी यूज हुआ करता था कथक में, मतलब फिल्मों में कथक भी होते थे। जो अब हो रहा है, जैसे कहते ना कि हर एक दौर बदलता है, उसी प्रकार नृत्य का भी दौर बदलता गया और फिल्मों का भी दौर बदलता गया। अब तो ज्यादातर उसमें मुजरा जो बहुत ही खास है लखनऊ घराने का, वो ज्यादातर उसमें प्रयोग में किया जाता है। बट जब गोपी कृष्ण जी जब थे और सितारा देवी जी जब फिल्मों में काम किया करते थे, तो वो फिल्में अगर देखा जाए तो उसमें भी यही सिक्वेंस हुआ करता था। मैंने ऐसे गोपी जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें वो खुद शिव बने हैं और तांडव कर रहे हैं। फिर कहीं कामदेव का जिक्र है कि जब कामदेव ने बसंत में जब नृत्य किया होगा रति के साथ में, तो फिर गोपी जी कामदेव भी बने हुए हैं। फिर उनकी झनक झनक पायल बाजी देखिए, उसमें हर एक डांस फॉर्म्स को मतलब हर एक स्टोरी को दिखाया गया है। राधा कृष्ण की स्टोरी भी दिखाई गई है, शिव पार्वती का तांडव भी दिखाया गया है, दोनों का लास्ट अंग भी दिखाया गया है।
अच्छा, तो ये बताइए कि आप बहुत जल्दी सिडनी में परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपकी क्या भाव भंगिमा हम देखेंगे?
हम तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही खुशी है कि आई एम कमिंग सिडनी, और मेरे लिए मधुरम को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद उनको देता हूँ मैं। सिडनी में हम टोटली माइथोलॉजिकली हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा भी कि हम ऐसे घराने से बिलोंग करते कि ज्यादातर हम माइथोलॉजिकली ही कथानक ज्यादा करते हैं। तो आई एम डूइंग एक शिवा का पूरा सिक्वेंस है जो हम कर रहे हैं, जो मेरे ग्रैंड मदर ने ही इसे कंपोज किया था मेरे लिए। तो हम एक श्लोक से शुरू करेंगे जो कि बनारस के ऊपर एक श्लोक है, वाराणसी गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित राम भागम, ऐसे इस श्लोक से शुरू करेंगे। और मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के द्वारा कुछ पोएट्री लिखी हुई है शिव के ऊपर, उनको मिला के एक सांगीतिक रचना की गई है, उससे मेरी शुरुआत होगी। फिर थोड़ा पारंपरिक कथक नृत्य होगा जो ट्रेडिशनल कथक होते हैं
जी।
उसके बाद हम एक तराना प्रस्तुत करेंगे और फिर लास्ट में एक राम के ऊपर एक भजन है बहुत सुंदर सा, जो की तुलसीदास जी ने लिखा है, चुमक चरत रामचंद्र दाजे सकैजनिया
जी जी।
तो ये मेरी दादी का बहुत ही फेवरेट ये भजन रहा है और उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से कंपोज किया था और बहुत ही फेमस रहा है ये सब जगह, क्योंकि उन्होंने ऐसा वो कहा था कि सभी भगवान ने डांस किया है। मतलब नॉर्मली जब भी लोग डांस करते हैं हमेशा श्रृंगार रूप में कृष्ण का जिक्र होता है या फिर शिव का जिक्र होता है, बट मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहीं जिक्र नहीं किया जाता कि भगवान राम ने कहीं नृत्य किया होगा। तो उन्होंने ऐसे बैठी बैठी सोचा कि भगवान राम ने कब नृत्य किया होगा, तो उनको ये भजन याद आया, ठमक चलत रामचंद्र भाजत कैजनिया।
हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं और पूरा विश्वास है कि इस घराने का नाम और भी ऊंचा करेंगे आप।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। नमस्कार।
नमस्कार।